Ugye pedig ilyen tartalmazítvárát, tehát fogadva a targetje. Mondjátok, hogy te targetim, ha rájátszik ki! Param pujjé kármisri chama sagati maharaj ki, param pujjé kármisri bhakti sagati maharaj ki, param pujjé 108 misri chama sagati maharaj ke pavan puri charno mein samaj ki or se milti, hum sabhi ko apni mangal mayi vani se kṛpā karne ki anukampa kare, he swami namostu namostu namostu.
Janana Bhau Bijankur Janana Ragadhyakshayam Upagatayashya Brahma Va Vishnurva Haro Dino Va Namastasmai जो विद्यादि सागर सुदी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने बोलिए भगवान महावीर स्वामी की आचार्य कुंदु कुंदु स्वामी की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज
परम पूज्य श्री क्षमा सागर जी महाराज की जय परम पूज्य श्री भक्त सागर जी महाराज की जय
हम सभी लोग यहाँ आकर रोज बैठते हैं कभी सुबह बैठते हैं कभी शाम बैठते हैं पर हम सबके मन में एक ही लगन है एक ही विचार है और वो ये कि जो जीवन शेष रह गया है उस जीवन को कैसे और बेहतर ढंग से जिया जाए ऐसा नहीं है कि जैसा जीवन हम जी रहे हैं उससे हमें कोई असंतोष है नहीं हम इससे भी बेहतर जी सकते हैं इस बात की हमें खबर लग गई है इसलिए हमारे मन में यह ललक है कि जो जीवन जैसा हमने जिया है वो तो ठीक है लेकिन यदि इससे बेहतर जिया जा सकता है तो मुझे प्रयत्न करना चाहिए और इसी मानसिकता से इसी भावना से हम सब लोग कोई ना कोई एक विचार अपने जीवन के बारे में करते हैं मेरे ख्याल से तो अपने जीवन के बारे में विचार करना ही पर्याप्त है कभी कभी जिस रास्ते पर हमें चलना है उस पर एक कदम रखना भी पर्याप्त हो जाता है मेरे ख्याल से तो पूरी यात्रा एक ही कदम में पूरी हो जाती है जो हम पहला कदम रखते हैं वो इस बात का निर्धारण होता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और मंजिल पर पहुंचने से पहले जो हम आखिरी कदम उठाते हैं वही कदम हमें मंजिल पर पहुंचा देता है मेरे ख्याल से एक ही कदम तो होता है जो कि हमें अपनी मंजिल पर पहुंचा देता है एक बात छोटी घटना है क्या हुआ था एक बार कि एक गांव के पास में थोड़े थोड़े ही पास में एक बहुत पुराना मंदिर था और उस गांव के लोग उस मंदिर को बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बताते थे। एक युवक भी बहुत दिन से इस बात को सुन रहा था कि गांव के थोड़ी ही दूर एक मंदिर है जो बहुत सुंदर है और बहुत प्राचीन है, मुझे उसे देखना चाहिए। वो रोज सोचता था कि अब जाऊंगा, लेकिन जा नहीं पाता। बहुत समय बीत गया उसे। एक दिन उसने तय किया कि सुबह होने से पहले ही निकल जाऊंगा मैं, और सुबह होने से पहले जब हल्का सा धुंधलका था तो वो निकल गया अपनी लालटेन लेकर के। लेकिन जैसे ही बाहर निकला उसने देखा कि अरे ऐसे कैसे यात्रा पूरी होगी, वहां मंदिर तक तो इतना अंधेरा फैला हुआ है, 2-3 किलोमीटर दूर तक अंधेरा फैला है, और मेरे लालटेन की रोशनी तो कुल 4 कदम है, बल्कि 1 ही कदम है, ऐसे तो संभव नहीं होगा। इतनी थोड़ी सी रोशनी से इतने बड़े अंधेरे को कैसे पार किया जा सकता है। वो वहीं किनारे पे बैठ के रास्ते के लालटेन रख के इस सोच में पड़ा हुआ है कि उजाला होगा फिर यात्रा करेंगे। इतने में ही एक वृद्ध हाथ में कैंडील लिए हुए चला आता हुआ दिखाई पड़ा। वो चकित हो गया कि कितनी दूर से आना हुआ आपका, मैं तो मीलों से चल के आ रहा हूं। इसी छोटी सी कैंडल में, उसने कहा, इसी छोटी सी कैंडल की रोशनी में अंधेरा नहीं मिला रास्ते में? नहीं, अंधेरा नहीं मिला रास्ते में, तो मुझे तो इतने दूर जाना है, 2-3 किलोमीटर, वहां तो पूरा अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। समझ गया बूढ़ा कि किस मुश्किल में है ये जिंदगी। कई बार अपनी ही तर्क से हम मुश्किल में डाल लेते हैं। लॉजिक तो एकदम परफेक्ट था कि 3 किलोमीटर के अंधेरे को 1 कदम की रोशनी से कैसे पूरा पाया जा सकता है। लॉजिक अपनी जगह ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ अलग ही बात है। उस बूढ़े ने कहा कि आओ मेरे साथ आओ, मैं बताता हूं, और उसे साथ लेकर उसकी लालटेन को आगे आगे करके और थोड़ी दूर गया तो युवक को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे ये बात तो मेरे ध्यान में नहीं आई कि मैं जितने कदम आगे बढ़ता हूं मेरे लालटेन की रोशनी भी उतने ही कदम और आगे बढ़ जाती है। अंधेरा निरंतर उस एक एक कदम के रखने से गायब होता चला जाता है, इस तरह तो मैं यात्रा कर पाऊंगा। उसे विश्वास होता है और वो वहां पहुंच जाता है। हम सब लोग को क्या करना चाहिए, हमें भी अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक कदम रखने की कोशिश तो करनी चाहिए, साहस तो करना चाहिए, और वो एक कदम ही हमारे लिए पर्याप्त होगा अगर हम अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम रखते हैं। हमने पिछले दिनों बात की थी कि हम शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, उसी को हम अपने जीवन का अच्छापन समझते हैं। बेहतर जीवन हम उसी को समझते हैं जिसमें शांति है, सुख है। हमने फिर चर्चा की थी कि हमारी कामनाएं हमें मुश्किल में डालती हैं, उनको हमें परिष्कृत करना चाहिए जिससे कि हम अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। आज और हमें थोड़ी सी आगे बढ़कर के कुछ बातें कर लेनी चाहिए। हमारे जीवन में जब तक सजगता नहीं होगी, जब तक सरलता नहीं होगी, जब तक संवेदनशीलता नहीं होगी, अवेयरनेस, सिंपलिसिटी एंड इमोशनल एटीट्यूड, ये 3 चीजें यदि हम अपने जीवन में शामिल कर लें, ये हैं लेकिन हम इनको डेवलप कर लें, तो संभव है कि हमारा जीवन पहले से ज्यादा बेहतर होगा। सजगता के मायने क्या है? हम लोग सजग तो हैं, हम रास्ते से जाते हैं, कहीं कोई कांच पड़ा होता है हम बाजू से निकल जाते हैं, हम बहुत सजग हैं। जहां कहीं हमें अपना अहित होता दिखाई पड़ता है वहां से हम हट जाते हैं, हम बहुत सजग हैं। हमारी सुख सुविधाओं को जुटाने में हम बहुत सजग हैं। ऐसी वाली सजगता की बात नहीं कर रहा, ऐसे तो हम बहुत सावधान हैं। हम अपनी इस तरह की सावधानी से चतुर हो गए हैं, इस तरह की सावधानी से दुनियादार हो गए हैं, लेकिन जीवन हमारा ज्यों का त्यों है वो बिल्कुल भी बेहतर नहीं बना है। इसका मतलब है कि सजगता के मायने सिर्फ इतना नहीं है कि मैं अपने भोग विलास की सामग्री को इकट्ठे करने के लिए सजग हूं, अपने सुख सुविधा के साधन जुटाने के लिए सजग हूं, या कि अपने शरीर पे आने वाली विपत्तियों से बचने के लिए सजग हूं। ये सजगता मेरे जीवन को आज तक बेहतर नहीं बना पाई। देख लीजिएगा अगर बेहतर बनाया हो तो। जब हम अपने अनुभव से ये चीज जान रहे हैं कि इस तरह अपने आसपास सुख सुविधा के साधन जुटा करके अपने शरीर को सुरक्षित करके, अपने घर मकान दुकान इन सब को सुरक्षित करके भी, इन सब के प्रति बहुत सजग हो करके भी अपने जीवन को बेहतर नहीं बना पाए, तब ऐसी कौन सी सजगता है? और कुछ भी नहीं है विशेष। मैं अपनी चेतना को देखूं कि मेरी चेतना कितनी मलिन हुई है, किन वजहों से वो मलिन होती है, किन वजहों से उसका पतन होता है, इस पर अगर मैं विचार करूं और सजग रहूं तो कोई वजह नहीं है कि हम अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाए, हम भूल गए हैं। हम इस बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, या ये कहना चाहिए बिल्कुल भी अवेयर नहीं है कि हमारा अपना जीवन कल से आज कितना मलिन हो गया है, या कि कितना पतित हो गया है। और पतित और मलिन किसको मानना चाहिए ये भी तो विचार कर लें। पता नहीं कौन किस चीज को मलिनता मानता है, कौन किस चीज को पतित होना मानता है, लेकिन मेरे ख्याल से तो दूसरे को गुस्सा करते देखकर हम यही मानते हैं कि आपका मन मलिन हो गया है। दूसरे को अहंकार करते देखकर हम यही मानते हैं कि आप इस तरह अपना मन गंदा कर रहे हैं। हम दूसरे को मायाचारी करते हुए देखकर यही तो कहते हैं कि भैया इतने खराब मत बनो। हम दूसरे को किसी चीज में इंडल्स होकर देखते हैं, उस चीज का लोभ करके देखते हैं, तो हम उसको कहते हैं, समझाते हैं कि भैया ये तो पाप का बाप है, भैया इसमें तो तुम्हारा आहित होगा। जब हम इन सब चीजों को जो दूसरे में हमारी दिखाई देती हैं और हमें मलिन मालूम पड़ती हैं, तो मैं अपने भीतर क्यों नहीं देखता हूं उन सब चीजों को? वे चीजें मेरे अंदर भी हो सकती हैं और वे चीजें मेरे चेतना को मलिन बनाने वाली हैं, ऐसा क्यों नहीं मानता हूं मैं? बस इतनी ही साधना करनी है। जिस दिन ये लगने लगे कि आज तो सुबह से शाम तक गुस्सा करके अपने मन को गंदा नहीं करूंगा, किसी से छल कपट करके अपने मन को गंदा नहीं करूंगा, अहंकार करके अपने मन को मैला नहीं करूंगा, और लोभ अपने सर्वनाश के लिए मैं उस लोभ को भी आहूत नहीं करूंगा, अगर इतनी हमारी मानसिकता बन जाए, इस बारे में हम सजग हो जाएं, जैसे ही कोई अवसर आवे चेतना के मलिन होने का, हम वहां से दूर हट जाएं कि नहीं भैया आप करो तो करो, मैं तो इसमें शामिल नहीं होऊंगा। जैसे हम विड्रॉ कर लेते हैं कई चीजों से जो हमें पसंद नहीं है, ऐसे ही जब हम खुद अपने वातावरण में मलिन होने के चांसेस देखें तो हम उनसे विड्रॉ क्यों नहीं कर लेते हैं? बहुत पुरानी बात है, 78 के लगभग की बात होगी, आचार्य महाराज द्रोणगिरी के रथों में गए थे और वहाँ पर साहू अशोक जी आए और वो आचार्य श्री को प्रणाम करके दो दो बार प्रणाम करके लौट गए, लेकिन आचार्य श्री अपने काम में लगे थे, उस तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो किसी से उन्हें कहा कि कैसे आचार्य महाराज हमारी तरफ देखेंगे, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। बोले कोई कठिन उपाय नहीं है, ऐसे तो वो अपने काम में लगे रहते हैं, आप जाके उनसे निवेदन करें कि मुझे कुछ नियम लेना है। हाँ ये ठीक है, पहुंचे उनके पास, महाराज आपका थोड़ा सा समय लूंगा, मुझे कुछ नियम लेना है। तो आचार्य श्री ने अपना कलम रख दिया और बताइए तो चर्चा होना शुरू हो गई। और फिर उनका दूसरों ने परिचय भी दे दिया कि ये वहां से आए, ठीक है, पर आप जो बात कह रहे थे कि मुझे नियम लेना है, बोले महाराज वो तो मैं लूंगी, लेकिन आपसे एक बात पूछनी है। क्या पूछना है? इतनी भीड़ आ रही है जा रही है, आप अपने छत पे बैठे काम में लगे हुए हैं, आपको इन सब से डिस्टर्ब नहीं होता कुछ भी? तो मालूम क्या जवाब दिया था आचार्य कि आपने कभी गाड़ी चलाई? बोले हाँ महाराज चलाई है गाड़ी। तो जब घाटी आ जाती है, बिल्कुल उतार आ जाता है, तब आप क्या करते हैं? बोले क्या करते हैं, पेट्रोल बचाने के लिए न्यूट्रल में डाल देते हैं। बोले मैंने भी अपनी गाड़ी अभी न्यूट्रल में डाल रखी है। जब ऐसे भीड़ भाड़ होती है तो मैं अपनी गाड़ी लूट, मैं राग द्वेष के अवसर आने पर उनसे विड्रॉ कर लेता हूं, तब फिर मुझे संसार का कि कोई भी मलिनता घेर नहीं सकती है। मलिनताएं हैं, परेशानियां हैं, लेकिन मैं परेशान हूं, ये मेरी चॉइस है। मैं परेशान नहीं होना चाहूं तो क्या मुझे परेशानियां परेशान कर सकती हैं? ये सजगता है, मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं। हम लोग ऐसा सोच करके कि क्या करें, महाराज आपको तो सब ऐसा लगता है, लेकिन संसार में जब जूझ हो तब समझ में आता है कितने अवसर हैं। मैं कहां कह रहा हूं कि नहीं है अवसर, हैं तमाम अवसर हैं, जिसमें कि मन गंदा हो सकता है, जिसमें कि चेतना मलिन हो सकती, सारे अवसर वही है, 24 घंटे उन्हीं से हमें गुजरना है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि हम सजग हो जाएं तो मलिनताएं हमें ज्यादा नहीं घेर पाएंगे, वे हमारे तक आ भी जाएंगी मलिनताएं, तब भी हमारा बिगाड़ नहीं कर पाएंगे। बिगाड़ हम अपनी असावधानी से अपने हाथ से कर लेते हैं, दोषी हम वातावरण को या कि किसी व्यक्ति को या किसी परिस्थिति को बता देते हैं, पर देखा जाए तो हम स्वयं उन क्षणों में अपनी असावधानी से दोषी हो जाते हैं। हमें अब अपने चेतना की निर्मलता के लिए सजग होना चाहिए। शरीर की मलिनता के प्रति जितने हम सजग हैं, जरा सा भी गंदा हो जाए तो हमें खुद ही अच्छा नहीं मालूम पड़ता अपना शरीर। दो तीन दिन नहीं नहाए तो इसी शरीर में से, अपने ही शरीर में से खुद को बदबू आने लगती है, तो हम उसको साफ सुथरा बनाते हैं, उसको नहलाते धुलाते हैं, अच्छे कपड़े पहना के सजाते हैं, तब बाहर निकलते हैं। तो कभी हम इस बारे में नहीं सोचेंगे कि हमें इसी तरह अपनी चेतना को भी जहां कहीं वो मलिन हो जाती है वहां नहीं जाना है, और जहां निर्मलताएं हैं वहां मुझे उस तरफ जाना है। अगर मलिन हो भी जाए तो सजग होकर सावधान होकर के वहां से बच करके अपनी निर्मलता का ही अभ्यास करना है, कर सकते हैं। एक संत हुए, वो पहले गृहस्थ थे और एक दुकान चलाते थे अपने, और दुकान उनकी इतनी चलती थी कि भारी बारिश भी हो रही हो तब भी लोग ग्राहक खड़े ही रहते थे। और ऐसे ही एक दिन था जब बहुत बारिश हो रही थी, आगे थोड़ा सा शेड था जिसके नीचे लोग खड़े हुए थे, और सामान देने में वो गृहस्थ बहुत मशगूल थे। उतने में एक साधु जी आकर के खड़े हो गए, और आधे घंटे हो गया। वैसे वो गृहस्थ साधुओं के बहुत श्रद्धालु थे, लेकिन क्या करें इतने व्यस्त थे कि ध्यान ही नहीं गया साधु की तरफ। आधे घंटे के बाद जब जरा ग्राहकों से बाहर आए तब उनकी दृष्टि पड़ी कि अरे बाबा जी तो खड़े हुए हैं। फौरन दुकान से उठकर के चरणों में प्रणाम करके कहा कि भगवान वहां कहां खड़े आप, इधर आइए, इधर बैठिएगा, और कितनी देर हो गई आपको? मुस्कुरा दिया साधु जी ने, सुनो मुझे तो आए ज्यादा देर नहीं हुई, लेकिन वो जो 24 घंटे तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है उसकी तरफ कब देखोगे? इतना ही पर्याप्त था। वो जो चेतना की निर्मल अवस्था, वो जो परमात्मा स्वरूप जो कि निरंतर तुम्हारे सामने है 24 घंटे, मैं तो आधे घंटे पहले ही आया हूं, जिसे तुम आधे घंटे तक अपने में, अपने सुख सुविधाओं के साधनों में भूले हुए, अपने मन को मलिन बनाने के साधनों में भूले रह करके और मुझे आधे घंटे तक नहीं देख पाए, वो तो फिर भी ठीक है, पर वो जो निर्मलता तुम्हारा आवाहन 24 घंटे कर रही है उसकी तरफ कब देखोगे? वो जो हमारे अपने चेतना की निर्मलता है उसकी तरफ कब देखेंगे हम? ये प्रश्न हमें अपने मन से, अपने आप से पूछना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं इसलिए नहीं, ये आपके भीतर खुद आना चाहिए कि हां सचमुच मुझे अब अपने अपने परिणामों की निर्मलता का विचार करना चाहिए, उसके प्रति सजग होना चाहिए। यही सजगता, यही अवेयरनेस हमारे जीवन को अच्छा बनाएगी, मुझे ऐसा लगता है। देखिए मेरे अपने विचारों से आप सहमत हो या नहीं हो, पर मैं तो सिर्फ आपको अपने विचार दे रहा हूं, मैं आपके ऊपर कोई अपने विचार थोप नहीं रहा हूं। आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हो तो कोई बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपकी मजबूरी हो, नहीं आपको ठीक लगे तो करके देख लीजिएगा, नहीं ठीक लगे तो मेरे पास रहेंगे, उससे कोई ज्यादा आपके जीवन में दखल नहीं पहुंचेगी, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी चीज सरलता। सरलता के मायने क्या है? बहुत सारे अर्थ हैं सरलता के भी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, बहुत स्पष्टवादी होना, बहुत ऑनेस्ट होना, बहुत ईमानदार होना इसको कहते हैं, बहुत वार्म हार्टेड होना, बहुत सीधा साधा जीना, बहुत सारे अर्थ हैं, इन पर अपन फिर विचार करेंगे। वो पर्यूषण का एक दिन तय है उसी के लिए, है ना? शायद आज अपन जरा सा इस बात पे विचार कर लें कि सरलता के मायने हैं कि मेरे मन में कोई भी दिखावे की जरा भी भावना नहीं है, मैं जैसा हूं वैसा हूं, मैं जैसा अपने को देखता हूं वैसा ही दूसरे को दिखाता हूं। होता यह है मुश्किल अपन लोगों के साथ कि इतनी सरलता भी अपनी मेंटेन नहीं हो पाती है, हम जैसे नहीं हैं वैसा लोगों को दिखाना चाहते हैं, हम जैसे हैं वैसा खुद को भी देखना पसंद नहीं करते। एक ऐसा हुआ, वाकया हुआ, एक फोटोग्राफर ने अपना संस्मरण लिखा कि उसने अपने स्टूडियो के बाहर तीन तरह के फोटो खींचने के लिस्ट लगाई कि जैसे आप लोगों की नजरों में दिखना चाहते हैं वैसा फोटो खिंचवाएंगे, तो ओनली 5 रुपीज, सिर्फ 5 रुपए का, और जैसा आप सोचते हैं कि आपको लोगों के सामने ऐसा होना चाहिए अगर उसका खिंचवाएंगे तो 10 रुपीज, और आप जैसे हैं वैसा खिंचवाएंगे तो 25 रुपीज। उसने सोचा था कि जो जैसा है वैसे ही तो खिंचवाएगा फोटो, लेकिन जो भी आते थे सिर्फ सस्ते की वजह से नहीं, जो भी आते थे वो कहते थे कि मेरा तो वैसा वाला खींच दो जैसा लोग मुझे पसंद करते हैं, या जब जैसा मैं लोगों के सामने दिखना चाहता हूं। उसने लिखा कि मेरे पास कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया जिसने ये कहा हो कि जैसा मैं हूं वैसा फोटो खींच। ये हमारे अपने जीवन का एक बहुत बहुत सीधा सा गणित है, हमारे अपने मन का गणित है। हम शायद सच्चे होना नहीं चाहते, लोग हमें सच्चा माने, बस हम इतना ही चाहते हैं। हम अच्छे होना नहीं चाहते, लोग हमें अच्छा माने, बस हम इतना ही चाहते हैं। लेकिन ये हमारी सरलता और सहजता नहीं है। वास्तव में सरलता और सहजता तो वो है जिसमें कि हम जैसे हैं वैसा लोगों के सामने प्रकट करते हैं, हम कोई दिखावा नहीं करते हैं, कोई आडंबर नहीं करते हैं, लेकिन आज आज ये बहुत कठिन हो गया है। हमारे स्टेटस का सवाल है, हम जैसे नहीं हैं वैसे अगर नहीं दिखेंगे तो लोग हमें पूछेंगे। विनोबा लिखते हैं कि आपकी माली हालत आपके चौके से मुझे मालूम पड़ेगी, आपके ड्राइंग रूम को देख करके मैं आपके बारे में कोई धारणा नहीं बनाना चाहता, ना आपको बाहर घूमते हुए देख करके आपके बारे में कोई धारणा बनाना चाहता हूं मैं, तो इससे मुझे मालूम पड़ेगा कि आपके किचन में आप क्या खाते हैं। ये भी इसी तरह की चीज है कि आप कितने सिंपल हैं, आप कितने हैं। खाने पीने में तो कोई दिखावा नहीं किया जा सकता, चार लोगों के बीच खाने पीने में दिखावा किया जा सकता है कि चम्मच से खा रहे हैं, कांटे से पकड़ रहे हैं, खड़े होके खा रहे हैं, सूट बूट में खा रहे हैं, चाहे जैसे खा रहे हैं। लोगों को अच्छा लगे नहीं तो लोग बैकबर्ड समझेंगे अगर हाथ से उठा के खा लेंगे। हाँ, ऐसा ऐसा जो ऐसा ये सब चीजें क्या हैं? ये सिर्फ दिखावा ही तो है, ये सिंपलिसिटी नहीं है, ये अनावश्यक रूप से जटिल होने की प्रक्रिया है। एक तो जटिलता व्यक्ति के भीतर स्वतः है, लेकिन ये बिल्कुल अनावश्यक जटिलता है। आज तक हमने कितने प्रकार के कपड़े पहने होंगे और हर बार ये सोचा होगा कि लोग देख रहे होंगे मेरे कितने प्यारे कपड़े हैं, लेकिन कभी एक रिसर्च करने के लिए दूसरे ग्रुप पर निकल जाओ और डाटा कलेक्ट करो, कोई नहीं देखता। मेरे जीवन में, मेरे जीवन की खुद घटना है, अनाउंसिंग करता था सभा में, तीन दिन का फंक्शन था, सुबह दोपहर शाम, नो ड्रेस तैयार करके रखी थी कि ये उस समय पहननी, ये उस समय पहननी, ये शाम के फंक्शन में अनाउंस करूंगा तब पहननी। लेकिन अनाउंसिंग के पहले ही दिन, चूंकि धर्म के मंच पे अनाउंस कर रहा हूं, तो एकदम ध्यान आया कि अरे मैं इतनी बड़ी बातें कह रहा हूं और मेरे अपने जीवन में उनमें से एक भी नहीं। देखता हूं अब अपने जीवन में करके देखता हूं, मैं सोचता हूं कि रोज मेरे नए कपड़े देख करके लोग सोचेंगे कि वाह कितना सेंसिटिव है ये अपने कपड़ों के बारे में। लेकिन मैं तीन दिन तक पूरे नौ बार मंच पर गया और एक ही ड्रेस का उपयोग किया। मैं सोचता था कि लोग ये सोचेंगे कि इनके पास ये अकेले एक ही जोड़ी कपड़ा है क्या, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा कि इनके पास एक ही जोड़ी है, ना किसी ने ये सोचा कि ये कौन से कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन हमें तो यही लगता है, इसी का नाम तो दिखावा है। और क्या चीज है, हम रास्ते से चले जा रहे हो, हमने नई गाड़ी खरीदी हो, और अगर कोई ये ना पूछे कि कब ली है तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल बेमानी है मेरा गाड़ी खरीदना। ये क्या चीज है? अगर आप किसी से ये कहें कि मैंने बिल्कुल अभी नई नई गाड़ी खरीदी और वो कहते कि सो व्हाट, तो मैं क्या करूं, रखे हो? आपका मन होगा कि कहां जाके फेंकाऊं, किसी कचरा घर में फेंकाऊं। ये क्या चीज है? हम चीजों का उपयोग नहीं करते हैं, फिर हम जब हम अपनी सिंपलिसिटी खो देते हैं तो चीजों का उपयोग नहीं करते हैं, चीजों को हम दिखाते जाते हैं। और ये दिनों दिन धीरे धीरे ये चीज बढ़ती चली जा रही है। दुख का एक कारण ये भी है, अब भी मैं एक आर्टिकल पढ़ के आया हूं, आने वाले समय में शायद वो चीज विदेश से आने शुरू होगी, हमारे यहां भी आएगी धीरे धीरे, कि अब अपने स्टेटस के लिए जब छोटे छोटे बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल उनका माइंड होने लगेगा, तब ये बात लोगों के दिमाग में आएगी माता पिता के, कि अपने स्टेटस के लिए उनके ऊपर पढ़ाई का ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। दो साल के बच्चों को अब वे विदेश में और कंप्यूटर सिखा रहे हैं ताकि वे शुरू से ही और बहुत होशियार और बहुत श्रेष्ठ बन सके। और साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट कह रहे हैं कि ये सब धीरे धीरे उनके मस्तिष्क को विकृत करने वाली है, उनके मस्तिष्क को बहुत जटिल बना देगी। और यही हम देख रहे हैं। हमें अपने आसपास अपने बच्चों से अपने फैमिली मेंबर्स से इतनी अपेक्षाएं हैं सिर्फ काहे के लिए कि चार लोगों के बीच में मैं जरा श्रेष्ठ दिखूंगा। ये जो दिखावा है ये मेरे अपने अंदर की सरलता को धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। सब चीजों में, खाने पीने पहनने ओढ़ने आने जाने उठने बैठने सब में, मंदिर में भी मैं यही चीज करता हूं कि मैं ठीक से दिखूं, मैं ठीक बनूं, ऐसा कोई प्रयास नहीं है, मैं ठीक दिखूं बस। किसी ने लिखा है कि आप ठीक ना हो और लोग ठीक समझें आपको, ये ठीक नहीं है। आप ठीक हैं और लोग ठीक ना समझें, ये फिर भी ठीक है। हम ठीक हैं, लोग मुझे ठीक नहीं समझें, ये फिर भी ठीक है। लेकिन हम ठीक नहीं हैं और लोग हमें समझ रहे हैं कि हम ठीक हैं, ये अपने जीवन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन आज अधिकांश मानसिकता हम लोगों की सबकी, देखिए मैं आपको, मैं अपने को बिल्कुल अलग करके नहीं कह रहा हूं आपसे, ये मान के चलिएगा, आप इस बात का भरोसा रखिएगा कि मैं आपको कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ बात कर रहा हूं। आप अपने से भी ऐसा डायलॉग करिएगा कहीं चुपचाप किसी कोने में बैठ करके, छाती पर हाथ रख करके अपने अपने आप से पूछिएगा कि क्या कर रहा हूं मैं, यही सब ना कर रहा हूं। तब फिर आपको अगर लगे कि हां मैं ऐसा कर रहा हूं और मैं ऐसा नहीं करूं तब भी मेरा काम चल सकता है। एक बहुत बड़ा राजा था जो अपने राज्य के लिए किसी उत्तराधिकारी की खोज में था और वो चाहता था कि बहुत सिंपल आदमी, बहुत सामान्य एक साधारण सा व्यक्ति, बहुत दिखावे से रहित व्यक्ति मेरे इस राज्य के लिए मिल जाए तो मैं अपनी बागडोर उसके हाथ में सौंप दूं। उसने घोषणा भी करवाई कि मैं उसे अपना राज दे सकता हूं जो कि दिखावा न करे। सब आते थे और कमिट करते थे कि मुझे दे दीजिएगा अपनी संपत्ति, मुझे दे दीजिएगा अपना राज, मैं बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। वो कहते थे कि इस तरह मेरे से आके कहने वाला भी तो अपनी योग्यता को खुद अपने मुंह से आंक रहा है, दिखावा ही तो कर रहा है कि मैं इस लायक हूं। वे खुद उसके पास जाते हैं कि सुनो, मेरा मन है कि तुम्हें अपनी सारी संपत्ति और अपने राज्य की बागडोर दे दूं। वो कहता है कि मुझे आवश्यकता नहीं है, तुम्हें आवश्यकता नहीं इसलिए तुम्हें देना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे आप बताइएगा कि किस शर्त पे देना चाहेंगे। शर्त तो हमने डिक्लेयर ही कर रखी है। उसने कहा क्या? उसने तो ये भी नहीं सुना था। वे लोग इंटरेस्ट लेते हैं ऐसी चीजों में जो उसके योग नहीं होते, जो योग होते हैं वे इन चीजों में इंटरेस्ट भी नहीं देते। उसे मालूम ही नहीं है कि किसी राज्य में ये घोषणा की गई है कि कोई उत्तराधिकारी बनाया जा रहा है और वो उसे सारी राज्य की बागडोर दी जा रही है और ये उससे कमिट करवाया जाएगा कि वो इन सब चीजों का दिखावा नहीं करेगा। जब उसको ये बताया गया तो उसने कहा मैं सोच के बताऊंगा। राजा ने कहा कि बस हो गई बात, जो ये कह रहा है कि मैं सोच के बताऊंगा तो वो मेरे योग है, मैं तो अब तुम्हें ही सौंपता हूं। और कहते हैं कि दूसरे दिन राजा ने घोषणा कर दी कि मैंने उस युवक को राजा बना दिया है और सारा अपना राजपाट उसको सौंप दिया है। लेकिन दूसरे दिन लोग तो ये सोच रहे थे कि राज्याभिषेक के समय युवराज और पूरे राजसी वेश में बैठे होंगे, लेकिन देखा तो वहां वो युवक ज्यों का त्यों वैसा ही बैठा था। रास्ते से गुजरा तब भी वैसा ही, जैसे कपड़े पहले पहना था वैसे ही था। लोगों ने कहा कि अरे अब तो तुम युवराज हो गए, राज तुम्हारे हाथ में है, कुछ तो थोड़ा चेंज करो। उसने कहा झूठ बात, इस शर्त पे मैं राजा बना हूं कि मैं कोई दिखावा नहीं करूंगा, मैं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा। अगर मैं कुछ अतिरिक्त कपड़े पहनता हूं तो ये दिखावा ही तो होगा कि अब मैं राजा हो गया हूं, खुद तो दिखाना शुरू कर। आप इस उदाहरण को सुनकर के क्या सोच रहे हैं? हमारे पास तो एक जरा सी चीज हमारे पास आती है तो ऐसा मन करता है कि चार लोगों को बताएं, जरा सा ज्ञान बढ़ जाता है तो ऐसा लगता है कि चार लोगों को बताएं। जरा से अच्छे कपड़े हम सिलवा लेते हैं तो ऐसे निकलते हैं जैसे कि लोगों को हिराकत की नजर से देखते हैं जैसे हमारे पास है और किसी के पास है ही नहीं। जरा जरा सी इन चीजों में हम अपनी अपनी सरलता को खो देते हैं और अपने हाथ से अपने को बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ग्रंथित, जिसको कहें कॉम्प्लेक्स, यही तो सब कॉम्प्लेक्स है, यही तो हमारे मन को, जीवन को जटिल करते हैं, हमें मुश्किल में डालते हैं। अपने हाथ से जैसे कोई अपने लिए मुश्किल पैदा करता हो वैसा ही हम करते हैं। जरा विचार करिएगा इन सब चीजों पर। और आखिरी बात, संवेदनशीलता, वो भी है हमारे अंदर। कोई हमसे बुरी बात कह दे हमें अच्छा नहीं लगता, हम संवेदनशील हैं, लेकिन हम किसी को बुरी बात कह दें तो उसे बुरा नहीं लगना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। हम रंग के बारे में संवेदनशील हैं, कौन सा रंग हमें पसंद है उस रंग के अलावा हम दूसरा रंग पसंद नहीं करते। हम गंध के बारे में संवेदनशील हैं, हम पांचों इंद्रियों के विषय के बारे में संवेदनशील हैं, हम भोजन के बारे में संवेदनशील हैं, हम उठने बैठने और अपने आसपास के लोगों के बारे में संवेदनशील हैं। मैं इस संवेदनशीलता की, इस सेंसेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इमोशंस की बात कर रहा हूं। और वो भी इमोशन, वो वाले इमोशंस नहीं, एंगर या कि सौरो, ये क्रोध या कि दुख या कि एक्साइटमेंट, ये भी इमोशंस हैं, इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पिरिचुअल इमोशंस की बात कर रहा हूं। क्या मैं चेतना के स्तर पर बहुत संवेदनशील हूं क्या? नहीं, मैं तो शरीर के स्तर पर संवेदनशील हूं, मैं अपने इंद्रियों के स्तर पर संवेदनशील हूं, मैं एक एक चीज को बहुत संभाल के उपयोग करता हूं, बहुत सेंसिटिव हूं इन सब चीजों के मामले। अपनी और दूसरे की चेतना के बारे में हम संवेदनशील नहीं है, नहीं है, मैं ऐसा एकदम नहीं कह रहा हूं, कम है, अपेक्षाकृत और चीजों के ऐसा कहूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। एकदम तो कोई अपनी चेतना के प्रति संवेदनशील नहीं हो सकता, इतना तो है कम से कम कि कोई बात जो हमें बुरी लगती है वो हम पसंद नहीं करते हैं, इतनी संवेदनशीलता तो अभी अपनी चेतना के बारे में है। अभी जब हम बात सुन रहे हैं तो जो चीजें खराब हैं उन चीजों को हम मान रहे हैं कि वे खराब हैं, और अगर कोई उन चीजों को, खराब चीजों को करेगा तो हम उसको समर्थन नहीं करेंगे, और कोई भली चीजों को करेगा तो ताली बजा करके उसका समर्थन करेंगे। इतने संवेदनशील तो अभी हम हैं। मैंने अचानक ऐसा कह दिया कि हम लोग संवेदनशील नहीं हैं, हैं। चेतना के बारे में भी हैं, लेकिन जैसे चेतना के बारे में हमें होना चाहिए, जैसा स्पंदन हमारे भीतर, जैसी धड़कन हमारे भीतर होनी चाहिए संवेदनशीलता की, वैसी नहीं है। ठीक ऐसे जैसे कि अगर किसी चींटी पे पैर पड़ जाए तो ऐसा लगे जैसे कि मेरे ऊपर किसी ने पैर रख दिया, ऐसा ऐसा स्पिरिचुअल इमोशन अपने अंदर नहीं है। कभी किसी के आंसू देख करके अपने आंख से भी आंसू गिर जाए, ऐसी संवेदनशीलता अभी नहीं है। दूसरे के दुख से हमारा मन कातर हो जाए, ऐसी संवेदनशीलता अभी नहीं है। किसी विदेशी से पूछा था कि भारत में क्या देखने आए थे, तो मालूम उसने क्या जवाब दिया था। हाँ, ऐसा नहीं समझना कि मैं अपने मन से बोल रहा हूं, पढ़ा था मैंने, बता भी सकता हूं। कोणार्क एक नॉवेल है, कोणार्क बहुत इतिहास का नॉवेल है, कहने को नॉवेल है पर पूरा इतिहास है उसमें। उसमें एक विदेशी आता है कोणार्क पर रिसर्च करने के लिए, तो उसको पूछते हैं कि आप यहां क्या देखने आए थे, यहां आपको क्या पसंद आया? तो बोले, मैंने भारत में ये देखा कि दूसरे के दुख के लिए किसी दूसरे की आंख भीगी हो जाती है, गीली हो जाती है, मैंने यहां ये पहली बार देखा है। हम जहां रहते हैं वहां ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ भारत है जहां दूसरा तो दुख में है लेकिन आंख हमारी भीग जाती है। इतनी करुणा, इतनी संवेदनशीलता, ये मैंने भारत में देखा है, यही देखने में आया था, सुना जरूर था मैंने कि हाँ सचमुच यहाँ के लोग इस तरह के हैं। अब वो धीरे धीरे चीज खत्म होती जा रही, मैं आपसे ये कह रहा हूं, कम तो होती चली जा रही। अब तो हमारा जिनसे संबंध है, जिनसे थोड़ा स्वार्थ है, उन पे आने वाले दुख से थोड़ी आंख भीगती है, लेकिन जिनसे हमारा कोई परिचय नहीं है, जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, वे कितनी तकलीफ में रहें हमें उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसे लोग हैं कि सुबह से अखबार पढ़ते हैं और उस पर लिखा हुआ है कि गुजरात में भूकंप आया है, तो हम फौरन पेपर में ये देखते हैं कि कहीं कोई खबर आई है क्या, या कि भीतर पेपर ले जाके घर में पूछते हैं कि गुजरात में अपना कोई तो नहीं है ना। नहीं, गुजरात में अपना तो कोई नहीं है। और वो जो अपने पड़ोस में रहते थे पहले, जिनको अपन ने किराए से दिया था, तुम याद करो कि उनका कोई गुजरात में था? हाँ था, तो थोड़ा पता करो, उनसे पता करो। हम ऐसा करते हैं, हमें गुजरात में कौन मरा था भूकंप में इसकी चिंता नहीं है, हमारा कोई निकट का अगर है तो थोड़ी चिंता है। बस ये है हमारी संवेदनशीलता का हिसाब। इसलिए मैंने कहा आपसे कि अगर कह दिया जाए कि हम संवेदनशील नहीं हैं, तो भी कोई बहुत बेजा बात नहीं होगी। हम संवेदनशील सिर्फ इतना ही है जहां हमारा स्वार्थ है, इससे अधिक नहीं है हमारी संवेदनशीलता। पर ये कैसे, इसके चलते ऐसी संवेदनशीलता होते हुए भी हम दुखी हैं, हम कैसे सुखी हो सकते, कैसे अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं? तो इस संवेदनशीलता को हम थोड़ा सा बढ़ाएं। अब दूसरे के दुख से हम दुखी हो जाते हैं, ये भी हमारे मन में आने लगे। ये बात भगवान महावीर स्वामी के जीवन की कल्पना किसी कवि ने की है, और उसने लिखा कि जब त्रिशला माँ एक दिन श्रृंगार कर रही थी और उन्होंने अपने जूड़े में बहुत सुंदर सा फूल लगाया था, तो वर्धमान अचानक कमरे में आए तो त्रिशला माँ ने पूछ लिया कि वर्धमान मैं कैसी लगती हूँ, फूल लगा के सुंदर दिखती हूँ? तो बोलते माँ तुम बिना फूल के जितनी सुंदर लगती हो, अब तो फूल लगा के बहुत कुरूप मालूम पड़ रही। अरे वाह, फूल देखो मेरे जूड़े में कितना सुंदर लग रहा है। तो वर्धमान क्या जवाब देते हैं? कभी की कल्पना है, भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि नहीं कहा मैं नहीं जानता ना, मैं कोई मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा ही होगा, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, पर मैं उनकी संवेदनशीलता की बात कर रहा हूं कि वे मालूम क्या जवाब देते हैं? मां फूल तुम्हारे सिर में बंधे जूड़े पर नहीं, वो तो डाली में ही सुंदर मालूम पड़ता है, उसे वहां से डाली से अगर हटा लो तो वो मर जाता है। मां तुम मरे हुए फूलों से अपना श्रृंगार करके मुझे जरा भी सुंदर नहीं मालूम पड़ रहे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये संवेदनशीलता है। क्या इस तरह की संवेदनशीलता हमारे भीतर है? अगर ऐसी संवेदनशीलता हो तो फिर देखिएगा आज संसार में जितनी भी हिंसा हो रही है वो सब एक मिनट में गायब हो सकती है, एक मिनट में, ज्यादा देर नहीं लगनी अगर ऐसी मानसिकता हमारे अंदर एक बार पैदा हो जाए। लेकिन हम बाहर से बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हिंसा रोकी जाए, लेकिन भीतर तो उतने ही परिणामों में अभी हिंसा अपनी जड़ें जमाए हुए है, हमारी संवेदनहीनता की वजह से। जब तक हम संवेदनशील नहीं होंगे तब तक हम अहिंसक हो ही नहीं सकते, तब तक हम धर्मात्मा हो ही नहीं सकते। हम धर्म की क्रियाएं कर सकते हैं, हम बहुत सारे त्याग तपस्या कर सकते हैं, हम व्रत नियम और उपवास कर सकते हैं, लेकिन संवेदनशील नहीं है अगर, तो ये सारी चीजें भी हमारे जीवन को बहुत ऊंचाई नहीं दे पाएंगी। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, कृपा करके मेरे इस कहे का अर्थ ये नहीं लेना कि कोई व्रत नियम करना कल से बंद कर दे या कि पूजा पाठ करना बंद कर दे। मैं ये कह रहा हूं कि पूजा पाठ और इतने ढंग से क्यों ना करें कि मैं जब बाहर निकलूं पूजा करके तो मेरा मन इतना संवेदनशील हो कि किसी को मेरे मन में तकलीफ देने का भाव ना आए, अगर किसी को तकलीफ है तो उसकी तकलीफ दूर करने का मैं उपाय सोचूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता? संभव है। उन लोगों की तो बहुत जिम्मेदारी है जो पूजा पाठ करते हैं, जो धार्मिक क्रियाएं दोहराते हैं उनकी तो और ज्यादा जिम्मेदारी है कि उन्हें संवेदनशील होना ही चाहिए। लेकिन क्या करें, किसको दोष दें, किससे जाके अपनी पीड़ा कहें? हमारी अपनी चेतना में ही इतनी ऊंचाई नहीं आई है कि हम ऐसे संवेदनशील हो सके, होना तो चाहिए। खैर, कोशिश तो की जा सकती है, अपन करेंगे कोशिश कि ऐसी संवेदनशीलता आए। और एक आखिरी घटना सुना करके अपन आज कुछ और आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन में करके देखेंगे, इसमें से कोई भी बात अच्छी लगी हो तो उसको करके देखेंगे, थोड़ा सरल होने की कोशिश करेंगे। एक क्षण को सही, मन में तो आ रहा था कि छल करें, नहीं करेंगे, मन में तो आ रहा था दिखावा करें, नहीं करेंगे, करके देखेंगे, अच्छा मजा आएगा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं आएगा मजा तो जैसा कर रहे हैं वैसा करते जाइए, कोई परेशानी नहीं। थोड़े से सजग होकर देखेंगे अपने चेतना के लिए कि भाई ये चीज तो मलिन करती है, अगर नहीं समझ में आएगा तो जैसा कर रहे हैं वैसे ही होने देंगे, मलिन क्या फर्क पड़ता है। जब तक अपने को समझ में नहीं आएगा तब तक कैसे चेंज किया जा सकता, हो भी नहीं सकता, वो बहुत आउटर चेंजेस होंगे, इनर चेंजेस नहीं होंगे, और वो यही रहा। पर कोशिश तो करें। विवेकानंद के जीवन की घटना है, जब वे बचपन में 11-12 साल के थे तो माँ से कहकर के मेला देखने गए थे, नरेंद्र नाम था उनका उस समय, और मेले से वे क्या खरीद के लाए थे, एक छोटा सा बच्चा क्या खरीद के लाएगा मेले से, आज के बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, आज का बच्चा मेले से खरीद के लाएगा तो पिस्टल खरीद के लाएगा, नहीं बताइएगा आप, मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप संभाल लिया करिएगा, बता दिया करिएगा कि नहीं महाराज ऐसा नहीं है, पर है ऐसा, क्या करें, स्वीकार करना पड़ता है, पिस्टल लेके आएगा भले ही वो झूठी होगी, चाहता तो वो सही है पर दिलाई उसको झूठी जाती है। लेकिन वो क्या लेके आए थे, वे माटी के गुड्डा गुड़िया लेके आए थे। अब दिन लग गए माटी के गुड्डा गुड़िया के, प्लास्टिक के आते हैं, गिर भी जाए तो टूटेंगे नहीं, इसलिए संभालने की कोई चिंता ही नहीं है, इसलिए संभालना हम सीखते नहीं है बचपन से, हम सीखते हैं तोड़ना और टूट जाना, ना हम अपने बच्चों को सिखाते हैं संभालना कि माटी की गुड़िया है, हाथ से जरा छूटे भी टूट के गिर जाएगी, माटी सा जीवन है, हाथ से छूट के गिरेगा टूट के बिखर जाएगा, इसलिए जरा सावधान रहें, ऐसा कहां सिखाते हैं, किसी को नहीं सिखाते। वे लेके आए थे और अचानक अपनी झोली में लेके बड़े खुश खुश चले आ रहे थे, और अचानक देखा कि एक टांगे वाला टांगा तेजी से चलाते आ रहा, और यहां पर दो लोग अपने छोटे से बेटे के साथ चले जा रहे हैं, बहुत छोटा तो है बेटा, 5-6 साल का होगा, 4 साल का, धीरे धीरे चल रहा है, और अचानक वो देखते हैं 11-12 वर्ष के नरेन कि क्या हुआ कि वो बेटा हाथ छोड़ करके और रोड के उस पार उसे कुछ फुग्गे दिखे और उसको लेने दौड़ा, और माता पिता दोनों कह रहे हैं कि ठहर जाओ उधर से टांगा आ रहा है, लेकिन वो कहां ठहरने वाला है, उसको कहां इस चीज का भान है, ये तो दंग रह गए देख करके क्या किया जाए, और इसके पहले कि वो चक्का उस बेटे के ऊपर आए, इसके पहले उसे उन्होंने खींच करके एक तरफ खड़ा कर दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में हाथ में लिए हुए वे माटी के गुड्डा गुड़िया फूट करके गिर करके टूट चुके थे, कुछ भी नहीं, वो बच गया, बस इतना ही पर्याप्त है, वो टूटे गुड्डा गुड़िया फिर से झोली में संभाल के चुपचाप अपने घर की तरफ लौटने लगे नरेंद्र। वो उसके माता पिता इस सोच में हैं कि ये किसका बेटा है, इसको धन्यवाद तक नहीं दे पाए हैं, किसका है ये बेटा, इससे मिलना पड़ेगा, अब क्या करें, ये तो कुछ बोलते नहीं और उतने आगे निकल गया है, वे उसको फॉलो करते हैं, उसके पीछे पीछे जाते हैं। नरेंद्र घर पहुंच करके और जैसे ही पहुंचते हैं तो माँ देखती है, अरे टूट गए, गिर गए थे क्या, लग तो नहीं गई, ये पूछती है, ये नहीं पूछती है कि क्यों तोड़ दिए सब, इसी के लिए ले गए थे पैसे, ये नहीं कहती, वो यही कहती है कि कोई बात नहीं दूसरे दिला देंगे, पर तुम्हें चोट तो नहीं लग गई, बोलते नहीं माँ कहीं कोई चोट नहीं लगी, पर ये टूट गए, वो नहीं बताते कि मैंने क्या किया, और चुपचाप भीतर कमरे में चले जाते हैं। इतने में वे दोनों माता पिता जिनके बेटे को नरेंद्र ने बचाया था वो आकर के नरेंद्र की मां के पैर छूते हैं, तो नरेंद्र की मां कहती कि क्या हुआ, कुछ नहीं, माँ आपका बेटा है जो अंदर गया, हाँ मेरा ही तो है, कुछ गलती हुई उससे, गलती नहीं हुई, ये इस छोटे से बेटे को तांगे के नीचे आने से बचा लिया उसने और अपने खिलौने टूट जाने दिए। मां और कुछ नहीं सुनती, अंदर जाकर के 12 साल के नरेंद्र को गोद में उठा करके और सब तरफ घूमती है और क्या कहती कि मेरा तुम्हें जन्म देना सफल हो गया, तुमने एक जीवित चेतना के प्राण बचा लिए, इन माटी के टुकड़ों को टूट जाए। अगर ऐसी संवेदनशीलता हम सबके भीतर कभी तो जागृत होगी, कभी तो आएगी। हम तो आज बात कर रहे हैं, कल हो सकता है कि हमारे जीवन में भी ऐसी कोई घटना घटे और हमारे मन में भी ऐसे दूसरे के प्राणों को बचाने के भाव उत्पन्न हो, तो हमारा जीवन पहले से ज्यादा सुखी होगा, पहले से ज्यादा बेहतर होगा, मुझे इस बात का विश्वास है। इसी विश्वास के साथ कि हमारे जीवन में सजगता है, हमारे जीवन में सरलता है, हमारे जीवन में संवेदनशीलता है, हम सब बैठ करके नमोकार करें।
Oh.
विद्यासागर मुनि
पिंजरे के पंछी से तो खामोश रहे तू बाहर से तो खामोश रहे तू भीतर भीतर रोए रे हे भीतर भीतर रोए तेरा दर्द न जाने को सके तू अपनी कहानी तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे कह न सके तू अपनी कहानी तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे विधि ने तेरी कथा लिखी आंसू में कलम डुबो तेरा दर्द न जाने को तेरा दर्द न जाने को चुपके चुपके रोने वाले रखना छिपा के दिल के छाले रे चुपके रोने वाले रखना छिपा के दिल के छाले रे ये पत्थर का देश है पगले कोई न तेरा हो तेरा दर्द न जाने को पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को तेरा दर्द न जाने को पिंजरे के पंछी रे Thank you. मिटे नारे भाई, करम का लेख मिटे नारे भाई। समझो इसकी सच्चाई रे करम का, लेख मिटे नारे भाई। इस दुनिया में भाग्य के आगे चले ना किसी का उपाय, कागज हो तो सब कोई बाचे, कर्म न बाचा जा। एक दिन इसी किस्मत के कारण बन को गए थे रघुराय रे, करम का लेख मिटे नारे भाई। कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे नारे भाई, करम का लेख मिटे नारे भाई। धीरज खोता काहे तू नाहक रोए, अपना सोचा कभी नहीं होता, भाग्य करे तो हो। चाहे हो राजा चाहे भिखारी, ठोकर सभी ने करम का लेख मिटे नारे भाई। कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे नारे भाई, करम का लेख मिटे नारे भाई, करम का लेख मिटे नारे। टूट गई है माला, टूट गई है माला, मोती बिखर चले, दो दिन रहकर